नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दो श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से जारी है। महिला डबल्स के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच अम्स्टरडैम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।